आकाशवाणी है। अब आप आकर्षिता सिंह से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई की सफल यात्रा के बाद आज सिंगापुर पहुंच गए। सिंगापुर के गृहमंत्री के शनमुगम ने प्रधानमंत्री की आगवानी की। प्रवासी भारतीय समुदाय ने भी श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। कल दोनों नेता भारत सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। श्री मोदी सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई भी देखने जाएंगे। प्रधानमंत्री का सिंगापुर की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मिलने का भी कार्यक्रम है। इस यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति को और मजबूती मिलने की संभावना है। इससे पहले ब्रुनेई में दोनों देशों ने उपग्रह और प्रक्षेपण यानों के लिए टेलीमेट्री ट्रैकिंग और टेली कमांड स्टेशन के संचालन में सहयोग के लिए समझौता किया। बंदर सेरी बेगवान में प्रधानमंत्री मोदी और सुल्तान हाजी हसनल बेल्किया के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद यह निर्णय लिया गया। श्री मोदी ने कहा कि ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट और हिंद प्रशांत क्षेत्र नीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो दोनों देशों के उज्ज्वल भविष्य की गारंटी है। दोनों देश बंदर सेरी बेगवान और चेन्नई के बीच सीधी उड़ान शुरू करने पर भी सहमत हुए। केंद्र त्रिपुरा सरकार नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा एनएलएफटी और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स एटीटीएफ के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि एनएलएफटी और एटीटीएफ हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं और उन्होंने त्रिपुरा के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तब से शांति और संवाद के माध्यम से सक्षम और विकसित नॉर्थ ईस्ट की कल्पना उन्होंने देश के सामने रखी है और नॉर्थ ईस्ट के लोगों और दिल्ली के बीच में एक बड़ा फासला था। ये फासला उन्होंने एक प्रकार से रोड रेल और विमानों से जोड़कर तो दूर किया ही किया, परंतु साथ में दिलों का फासला भी दूर करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है।
केंद्र सरकार ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलोंग के साथ संघर्ष विराम समझौते को एक साल के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्य में स्थायी शांति को बढ़ावा देने के लिए सितंबर 2024 से प्रभावी इस समझौते को एक साल के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे 10 सितंबर से पहले सभी चिकित्सा संस्थानों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों की रिपोर्ट भेजें। स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्र ने इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को पत्र लिखा है। उनसे कहा गया है कि वे प्रत्येक क्षेत्र और जिले में अधिक भीड़भाड़ वाले अस्पतालों की पहचान करें और वहां प्राथमिकता के आधार पर कार्यरत चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत पेंशन पाने वाले लोग अब पहली जनवरी 2025 से देश के किसी भी हिस्से में किसी भी बैंक में अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। इससे 78 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लाभ होगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की एक बड़ी उपलब्धि बताया है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने मोबाइल टावर लगवाने के नाम पर चल रही धोखाधड़ी के खिलाफ चेतावनी दी है। लोगों से नकली नोटिस के आधार पर 2500 रूपये की मांग की जा रही है। इस नोटिस में दूरसंचार विभाग मोबाइल टावर लगाने के लिए शुल्क लेकर फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने का दावा किया गया है। पेरिस पैरालंपिक्स में भारत के सचिन सर्जे राव ने पुरुषों के शॉटपुट F46 में रजत पदक जीत लिया है। तीरंदाजी में पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में हरविंदर सिंह क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।